किस्सा कहानी बाय निधि बासु पॉडकास्ट में आप सबका स्वागत है। ये स्पॉटिफाई एक्सक्लूसिव पॉडकास्ट आपके लिए लेकर आई हूँ मैं निधि बासु। इस पॉडकास्ट में सुनिए अपनी पसंदीदा नए पुराने लेखकों द्वारा लिखी दिल छूने वाली हिंदी कहानियाँ केवल स्पॉटिफाई पर। फॉलो बटन दबा के मेरा पॉडकास्ट फॉलो जरूर करें। आप सभी के लिए नववर्ष मंगलमय हो। सन 2022 के पहले एपिसोड में सुनिए बहुचर्चित साहित्यकार डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी जी द्वारा लिखी कहानी पुत्री कामेष्टी, जिसमें है एक नया दृष्टिकोण, एक नई सोच। वाचन है निधि बासु का। ऑफिस से घर लौटा तो 8 बज रहे थे। बाहर बादल के कारण मौसम खुशनुमा हो रहा था। इस वक्त एक बढ़िया चाय और गर्मा गर्म पकौड़े की दरकार थी। मन था कि चाय पकौड़े खाते खाते कुमार गंधर्व जी का कोई भजन सुना जाए। दिन भर ऑफिस में सिर खपाने के बाद कुछ अच्छा खाने का और कुछ अच्छा सुनने का मन करता है। सुनीता का उत्तर भी मालूम था। वो कहेगी, अरे अभी पकौड़े खाओगे तो खाना खराब हो जाएगा। ऐसा करो, अभी 2 बिस्किट खा लो, मैं झटपट खाना लगा देती हूँ। तुम कहोगे तो मैं खाने के समय उतार दूंगी पकौड़े तुम्हारे लिए। सच, कई बार इतना गुस्सा आता है इन महिलाओं पर, पता नहीं ये इतनी कैलकुलेटिव क्यों होती हैं? कब इन्हें समझ में आएगा कि जिंदगी में कई बार कुछ चीजें एकदम करने का जी चाहता है झटपट। नफा नुकसान, देर सवेर, दिन रात, ये सब देखने में तो उस बात का मजा ही चला जाता है। अब उसे कैसे समझाएं कि चाय पीते पीते कुमार गंधर्व जी का गायन सुनने जैसा आनंद नहीं है दूसरा इस दुनिया में। लेकिन उसी समय सुनीता, अरे मेरी सब्जी जल गई या दूध में उफान आ गया जैसा डायलॉग ना बोले तो ये दुनिया का 8वां आश्चर्य होगा। लेकिन घर में जैसे ही दाखिल होकर अपनी फरमाइश दागी तो सुनीता ने कहा, अच्छा तुम फ्रेश हो जाओ, मैं चाय पकौड़े लेकर आती हूँ। ये मेरे लिए महान आश्चर्य का क्षण था। बिना किसी बहस के सुनीता पकौड़े बनाने को राजी हो गई। मन तो हुआ कि कहूं, भला तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी, लेकिन बना बनाया मूड बिगाड़ने की इच्छा नहीं हुई। फ्रेश होकर डाइनिंग टेबल पर लौटा तो देखा चाय पकौड़े मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं, साथ ही एक निमंत्रण पत्र भी प्रतीक्षा कर रहा था। कौतूहलवश उसे खोलकर देखा और पढ़ने लगा, लेकिन मामला कुछ समझ में नहीं आया। कार्ड त्रिलोक कुमार दास की तरफ से था। त्रिलोक कुमार दास यानी सुनीता के सबसे छोटे मामा, जो देहरादून में रहते हैं। उन्हें सब प्यार से छोटू मामा कहते थे। उनकी उम्र और मेरी उम्र में 2-3 साल का ही फर्क था, लिहाजा रिश्तेदारी के साथ साथ दोस्ती भी थी हमारी आपस में। वे किस बात का निमंत्रण भेज रहे थे ये समझ में नहीं आया। मजूमन पढ़ा तो बात और भी समझ से बाहर हो गई। निमंत्रण पत्र में लिखा था, प्रियवर, अपनी छोटी बेटी दिव्या के 18वें जन्मदिन दिनांक 26 जून सायं 7 बजे हमारे निवास पर एक भोज का आयोजन है। आपसे आग्रह है कि कृपया इस आनंद के अवसर पर सपरिवार पधारने का कष्ट करें। सादर भवदीय त्रिलोक कुमार दास चैताली दास। उस निमंत्रण पत्र को कई बार पढ़ा तब भी मामला समझ में नहीं आया। तभी सुनीता किचन से आई तो मैंने पूछा, अरे ये मामला क्या है, ये तुम्हारे छोटू मामा को हो क्या गया है, ये किस बिटिया की बात कर रहे हैं? सुनीता की अपने छोटे मामा से गहरी पटरी बैठती थी। शादी के बाद सुनीता के जिस रिश्तेदार के यहाँ हमारा सबसे ज्यादा आना जाना था वे छोटू मामा ही थे। हम भी सपरिवार कई बार उनके यहाँ देहरादून गए। सुनीता के सभी मामा लोगों में सबसे ज्यादा स्टाइलिश तरीके से रहने वाले और सबसे संबंध बनाकर रखने वाले प्राणी थे। उन्होंने राजपुर में एक छोटा सा लेकिन एकदम ब्रिटिश जमाने की याद दिलाने वाला बंगला भी बनवा लिया था। बच्चों को उस घर में जाकर रहना बहुत अच्छा लगता था। मुझे अच्छी तरह मालूम है कि उनके 2 लड़के हैं, रजत और दीपक। दोनों के बीच में 2 साल का अंतर था। रजत इंजीनियरिंग के 3रे साल में था और IIT मुंबई में पढ़ रहा था। रजत के एडमिशन के समय हम सबकी ये इच्छा थी कि वो दिल्ली में ही एडमिशन ले ले, जिससे वो हमारे घर रहकर पढ़ सके या कम से कम छुट्टियों और वीकेंड पर आ जा सके। लेकिन उसका एडमिशन IIT मुंबई में हो गया था। छोटा बेटा दीपक 12वीं करके चुका है। लेकिन छोटू मामा ने ये कैसा कार्ड भेजा है जिसमें साफ साफ लिखा है, हमारी छोटी बेटी दिव्या। ये बात मेरी समझ के बाहर की थी। सुनीता बोली, खाना खा लो फिर बात करते हैं। सुनीता के चेहरे पर सीआईडी सीरियल वाले शिवाजी साटम का सा भाव था, जिससे पता लगाना मुश्किल था कि ये वो खुशी में बोल रही है, दुख में बोल रही है या फिर उपहास में। खाने की मेज पर सृष्टि और समर्थ की मोबाइल फोन को लेकर नोकझोंक चलती रही। बच्चे भी आजकल मोबाइल के अलावा किसी और विषय पर बात ही नहीं करते। यदि कोई अन्य विषय हुआ भी तो उसका आधार मोबाइल फोन ही होता है, या फिर बात घूम फिर कर मोबाइल पर आ जाती है। समर्थ की जिद थी कि उसे सृष्टि जैसा ही मोबाइल दिलाया जाए, और सृष्टि का कहना था कि समर्थ अभी छोटा है, इसलिए उसे नए मोबाइल के लिए इंतजार करना चाहिए। सृष्टि की बात सही थी, हमने उसे भी नया मोबाइल तभी दिलाया था जब वो कॉलेज में आ गई थी। समर्थ का कहना था कि उसे कोचिंग भी जाना पड़ता है और उसको एक अच्छे मोबाइल की सख्त जरूरत है बाहरी दुनिया से जुड़े रहने के लिए। ऐसे में अपना बचपन और कॉलेज के दिन याद आ ही जाते हैं, जब बिना मोबाइल, बिना फेसबुक व्हाट्सएप के भी हमारा जीवन बड़े मजे में और सुख से बीता। लेकिन बच्चे तो जैसे इसके बिना एक मिनट नहीं बैठ सकते थे। सुनीता की भी दलील सही थी कि अभी से इतना महंगा और हाईटेक फोन दिलाएंगे तो समर्थ की पढ़ाई का भट्टा ही बैठ जाएगा। वैसे भी इन दिनों उसका दिमाग दूसरी बातों में ज्यादा लगा रहता है। इतनी सारी बात में छोटू मामा के निमंत्रण की बात पूछने का होश ही नहीं रहा। हाँ, एक बार बीच में कहीं सृष्टि ने छोटू मामा की नई बेटी का जिक्र किया भी तो सुनीता ने उसे डपट कर बात बदल दी। बेडरूम में थोड़ा ऑफिस का काम निपटाने के बाद मैं सोचता रहा कि आखिर यह निमंत्रण पत्र है किस चीज का। छोटू मामा के दो लड़के थे तो ये नई लड़की कहां से आ गई। हाँ, कई बार लोगों को ज्यादा उम्र में भी बच्चे हो जाते हैं, लेकिन ये तो 18वें जन्मदिन की पार्टी दे रहे थे। दीपक के बराबर की लड़की कैसे पैदा हो सकती है। हम मर्दों का दिमाग खुराफाती होता ही है। तुरंत मेरे मन में शंका आ गई छोटू मामा के चरित्र को लेकर। हो सकता है उनका ही कोई पुराना चक्कर हो जो अब जाकर खुला है। हो सकता है उनके किसी महिला से संबंध हो पहले के, और उन संबंधों से ये लड़की पैदा हुई हो। इतने दिनों तक छुपा कर रखा हो और अब अचानक बात सामने आ गई हो। कर्ण कुंती से लेकर मासूम फिल्म तक के सारे दृश्य मेरी आंखों के सामने से घूम गए। कहीं मन के किसी कोने में छोटू मामा से रश्क भी होने लगा कि यार, जो हम ना कर पाए कभी वो तुमने करके दिखा दिया, मिलेंगे तो कहूंगा जरूर ही। किचन का काम निपटाकर जब सुनीता बेडरूम में आई तो मैंने उसे छूटते ही कहा, तुम्हारे छोटू मामा तो बड़े गुरु निकले, चुपचाप बेटी भी पैदा कर ली और किसी को हवा तक नहीं लगने दी। अब बता रहे हैं जब बच्ची इतनी बड़ी हो गई है। मेरी बात का सुनीता ने बड़ा ही संक्षिप्त उत्तर दिया, जैसा आप समझ रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। और इतना कहकर वो बाथरूम में चली गई। हो सकता है उसे मेरा उसके सबसे प्रिय मामा का इस तरह उपहास करना पसंद नहीं आया होगा। सही भी है, जिसे आप इतना चाहते हों, हमेशा आदर और प्रेम से उसकी तरफ देखते हों, उसके बारे में ऐसा सुनना किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। मुझे अपने आप पर भी गुस्सा आ गया। अपने स्वर में इतना उपहास लाने की जरूरत नहीं थी मुझे। हो सकता है मेरा अनुमान सही हो, लेकिन उसे इस तरह मजाक में उड़ाना तो ठीक नहीं है। सुनीता बाथरूम से निकली तो मैंने अपने स्वर को यथासंभव संवेदनशील बनाते हुए कहा, नहीं यार, मेरा मतलब वो नहीं था। मैंने तो इतना कहा कि छोटू मामा को, मैंने कहा ना समीर, तुम जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। सुनीता ने मेरी बात काटते हुए कहा, फिर कुछ क्षण शांत रहकर वो बोली, बल्कि उससे कुछ ज्यादा है। अब उसके चेहरे पर एक रहस्य भरी मुस्कान थी। मैं जानता हूं कि दिन भर टीवी या लैपटॉप पर सीरियल देखते देखते इंसान उसी तरह के मैनरिज्म करने लगता है। सुनीता भी सास बहु सीरियल्स नाम की महामारी से अछूती नहीं थी, इसलिए उसके चेहरे की मुस्कान को देखकर मैं भली भांति भांप सकता था कि बहुत कुछ है जो वो बताना चाह रही है, लेकिन कमर्शियल ब्रेक के लिए रुक रुक कर। क्या है भाई, हमें भी तो बताओ, मैंने सुनीता के स्वर से मिलता जुलता स्वर निकाला जिससे उसका उत्साह बना रहे। समीर, कार्ड को जरा गौर से पढ़ो, खासकर तारीख। तब मैंने कार्ड को फिर पढ़ा। हाँ, ठीक ही तो कह रही थी सुनीता। दिव्या का जन्मदिन 26 जून को मनाया जा रहा था। 26 जून को तो दीपक का जन्मदिन होता है। वैसे तो मुझे किसी का भी जन्मदिन ठीक से याद नहीं रहता, लेकिन दीपक का जन्मदिन याद रहने का विशेष कारण ये था कि वो 26 जून को पैदा हुआ था और हम सभी उसे मजाक में आपातकाल कहकर चढ़ाया करते थे, क्योंकि उसी दिन सन 1975 में आपातकाल लगाया गया था। लेकिन सुनीता की इस बात से तो गुत्थी सुलझने की बजाय और भी उलझती जा रही थी। अब कोई भी बात मेरे भेजे में पक ही नहीं पा रही थी। अरे अब पहेलियां बहुत हो गईं सुनीता, सीधे सीधे बताओ ना माजरा क्या है। बताती हूँ, लेकिन एक शर्त पर। बिल्कुल ध्यान से सुनोगे, मजाक नहीं उड़ाओगे, और हाँ एक वादा भी करो। अब क्या है यार? नहीं समीर, बात सीरियस है, इसलिए ये वादा चाहती हूँ। वादा ये कि सब जानने के बाद भी तुम मेरा साथ दोगे, मेरे पीहर वालों का साथ दोगे, और सबसे बड़ी बात, छोटू मामा का साथ दोगे। सुनीता का चेहरा खासा गंभीर था, इतना कि मैं कुछ और नहीं कह पाया, बस उसके हाथ पर अपना हाथ रखकर वादा दे दिया। मेरे वायदे से आश्वस्त होकर सुनीता ने जो कहानी सुनाई वो कम से कम मेरे लिए तो अकल्पित थी। तुम तो जानते हो कि छोटू मामा के दोनों लड़के स्वभाव में, व्यवहार में कितने अलग हैं, और ये स्वभाव का फर्क अभी से नहीं है, मैं तो उन दोनों को बचपन से देख रही हूं। जब छोटू मामा के दूसरा लड़का पैदा हुआ तो उनके घर में खुशी नहीं, उदासी का माहौल था। दरअसल छोटू मामा और चैताली मामी दोनों ही लड़की चाहते थे। उनकी बड़ी इच्छा थी कि घर में एक लड़का एक लड़की हो, लेकिन हो गया लड़का। सुनीता ने बात शुरू की। अच्छा, तभी शायद मामी दीपक को बचपन में लड़कियों जैसे कपड़े पहनाकर रखती थी। दीपक था भी बड़ा सुंदर, भूरे गुंगराले बाल, गोल चेहरा, बड़ी बड़ी आंखें और एकदम गब्दू था। इसलिए जब हमारी शादी हुई तो मुझे यही लगा कि तुम्हारे छोटू मामा के एक लड़का और एक लड़की हैं। अरे तुम ही क्या, सभी लोग यही समझते थे। मामी बड़े शौक से उसका हेयर स्टाइल करती थी, डिजाइनर कपड़े सिलवाती थी उसके लिए। मामी का ये दीवानापन और भी चलता, लेकिन दीपक के 1.5 साल का होने के बाद मामी को एहसास हुआ कि ऐसे में बच्चे के मन में कोई कॉम्प्लेक्स ना आ जाए। हाँ, जब सृष्टि हुई थी मुझे याद है मामा ने मुझसे कहा था, समीर तुम लकी हो, पहली लड़की हुई है, अब तुम्हें कोई टेंशन नहीं है, दूसरा लड़का भी हो तो घर में कम से कम एक लड़की तो रहेगी, लड़कियों से घर पूरा हो जाता है। लेकिन समीर, छोटू मामा अपने दोनों बेटों को दिलो जान से चाहते थे। रजत तो बचपन से ही बहुत होशियार था, क्लास में अव्वल नंबरों से पास होता था, स्कूल का डिबेटर था, क्रिकेट टीम का कैप्टन था, कुल मिलाकर ऑलराउंडर था बचपन से ही। इसलिए सुनीता, जब वो IIT में सेलेक्ट हुआ पहले अटेम्प्ट में, तो मुझे तो बिल्कुल आश्चर्य नहीं हुआ, उसे IIT में भी अपनी पसंदीदा ब्रांच मिल गई थी। मैंने सुनीता की बात का समर्थन करते हुए कहा, याद है समीर, तुमने जब दीपक से कहा था कि तुम्हें भी अपने भैया जैसे IIT में ही जाना है, तो उसने कैसा मुंह बनाया था? हाँ, लेकिन शायद गलती मेरी ही थी, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। हर बच्चे की अपनी अलग काबिलियत होती है, अलग गुण होता है, हुनर होता है, और मैं सोचने लगा, दीपक सचमुच अलग था अपने भाई से। उसे हमेशा घर के कामकाज बहुत पसंद आते थे, सलीके से रहना, ठीक से कमरा जमाना, किचन में जाकर माँ की मदद करना, और तो और उसने कहीं से क्विलिंग, स्टिचिंग जैसे काम भी सीख लिए थे। चैताली मामी ने बताया कि उसे डांस सीखने का शौक है, रंगोली बहुत अच्छी बनाता है। हम सब उसका मजाक भी उड़ाते थे, अरे दीपक तेरी बीवी बड़ी सुखी रहेगी, उसे कोई काम ही नहीं करना पड़ेगा। जवाब में दीपक बस मुस्कुरा कर रह जाता था। लेकिन इस तरह की बातों में रुचि होने के कारण दीपक का ध्यान पढ़ाई पर नहीं था, इसलिए वो 10वीं की परीक्षा में फेल हो गया। वो उस साल पहली बार फेल हुआ था। छोटू मामा ने कहा भी था, रिजल्ट तो उसका हमेशा से ही खराब आता रहा, लेकिन अभी तक वो फेल नहीं हुआ था। इस बार फेल होने का दुख है, लेकिन सदमा नहीं है। छोटू मामा सच में एक बहुत अच्छे पिता हैं। उन्होंने अपने बच्चों को उनकी रुचि और क्षमता दोनों को देख परख कर ही उन्हें शिक्षा दी और उनके बारे में महत्वाकांक्षाएं भी उसी हिसाब से गढ़ी। मैंने उस समय छोटू मामा से कहा था, यदि दीपक की रुचि पढ़ाई में नहीं है तो क्यों उस पर जोर जबरदस्ती करें। उसे किसी फाइन आर्ट्स या एलाइड आर्ट्स वाले किसी इंस्टीट्यूट में दाखिला दिला देते हैं जहां रहकर उसकी कलाओं को निखार मिल सके। दिल्ली में तो ऐसे ढेर सारे इंस्टीट्यूट हैं जहां उसकी कलाओं को प्रोत्साहन मिल सकेगा। छोटू मामा ने कहा कि वे इस पर विचार करेंगे, लेकिन हम दोनों ही अपने कामों में इतने मशगूल हो गए कि हमें एक दूसरे की खोज खबर लेने की सुध नहीं रही। इस बीच एक बार छोटू मामा का फोन आया था रजत के बारे में कि उसका कोई पेपर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में सेलेक्ट हुआ है और वो आयरलैंड जा रहा है। तब भी मन में विचार आया था कि छोटू मामा का एक बच्चा तो इतना अच्छा कर रहा है, लेकिन दूसरे का भाग्य देखो। जानते हो ना समीर, हमने उस समय दिल्ली के कुछ इंस्टीट्यूट्स के ब्रोशर भी भेजे थे छोटू मामा को, लेकिन उनका कोई जवाब नहीं आया। हाँ, मुझे लगा कि शायद छोटू मामा दीपक को वहीं रखकर पढ़वाना चाहते हैं, अपने पास ही रखना चाहते हैं। पुत्र प्रेम और क्या कह सकते हैं, मैंने कहा। मुझे तब भी बड़ा गुस्सा आया था छोटू मामा पर कि उन्होंने हमारे उस पत्र का कोई जवाब ही नहीं दिया था। मुझे मालूम है समीर, तब तुम्हें बहुत गुस्सा आया था। मैंने तुम्हें बताया नहीं, लेकिन छोटू मामा ने उस दौरान मुझसे बहुत लंबी बातचीत की थी दीपक को लेकर। दरअसल वे दीपक को लेकर कुछ ज्यादा ही परेशान थे। दीपक बहुत एकाकी हो गया था, उसके दोस्त ना के बराबर थे, घर में भी वो किसी से कुछ खोलकर बोल नहीं रहा था, बस अपने आप में रहता था। इस बीच उन्होंने दीपक में कुछ विचित्र से परिवर्तन देखे। दीपक अक्सर अपना कमरा बंद करके सचता संवरता था और उसका सजना संवरना लड़कों की तरह नहीं था। वो अपनी माँ के मेकअप के सामान को लेकर सचता संवरता था। हाँ, बचपन में उसे चैताली मामी ने लड़कियों की तरह रखा था ना कुछ साल, शायद इसी का असर हो, मैंने तंज में कहा, लेकिन सुनीता सीरियस थी। छोटू मामा और मामी को भी पहले ऐसा ही लगा, लेकिन फिर उन्होंने उसे छिपकर ऑब्जर्व करना शुरू किया। उन्होंने देखा कि उसका सजना सवरना खेल या मजाक का हिस्सा नहीं है। वो ऐसे सज के घंटों कमरा बंद किए बैठा रहता था, अपने आप को देखता रहता था। इस बीच उसने अपने बाल भी लंबे कर लिए थे। अरे आजकल तो लड़के भी बाल लंबे करके पोनीटेल बांधते हैं, शायद वैसा ही कुछ हो। वैसा नहीं था समीर, सबके सामने तो वो वैसे ही रखता था जैसे और लड़के रखते हैं, लेकिन अकेले में मेकअप के दौरान वो बालों को भी अलग अलग तरीके से बनाता था, लड़कियों की तरह। और उस दिन तो हद हो गई जब, कहते कहते सुनीता रुक गई। उसकी आंखों में नमी थी। क्या हुआ, एनीथिंग सीरियस, मैंने पूछा। दरअसल मुझे भी नहीं मालूम था कि आगे मुझे क्या सुनने को मिलने वाला है। उस दिन छोटू मामा ऑफिस से आए तो दीपक का कमरा बंद था। उन्होंने खिड़की से झांकने की कोशिश की तो झिरी में से उन्हें अजीब सा दृश्य दिखाई दिया। दीपक अपनी मां के अंडरगारमेंट्स पहने पलंग पर लेटा है, सिर्फ ब्रा और पैंटी में, और अपने शरीर को सहला रहा है। ये दृश्य छोटू मामा के लिए असह्य था। वे दरवाजा खोलकर दीपक से बात करना चाहते थे, लेकिन चैताली मामी ने रोक दिया। उनकी बात सही थी, समस्या उतनी आसान नहीं थी जितनी दिख रही थी। कुछ समय बाद जब मामा मामी ने दीपक से बात की तो उसने बताया कि वह लड़के की तरह नहीं, लड़की की तरह जीना चाहता है। उसका शरीर, उसकी भावनाएं और उसकी गतिविधियां, सभी कुछ उसे एहसास दिला रही हैं कि वो एक लड़की है। वो अपने इस वर्तमान रूप से छुटकारा पाना चाहता है, क्योंकि इसमें उसका दम घुटता है। वो अपने आप को किसी भी चीज पर केंद्रित नहीं कर पा रहा है। वो अपने अंदर अपनी पहचान के संकट से जूझ रहा है। वो लड़का है जो वो रहना नहीं चाहता, वो लड़की नहीं है जो वो बनना चाहता है। हे भगवान, ये सब दीपक ने कहा और कैसे सहा होगा छोटू मामा ने। मैं चौंक कर बोला, छोटू मामा सचमुच एक हिम्मती पिता हैं। दीपक से बात करने के बाद उन्होंने मेडिकल जर्नल्स खंगालने शुरू किए और मनोचिकित्सकों के पते भी। उन्होंने दीपक को बड़े मनोचिकित्सकों को दिखाया, उनसे सलाह मशवरा किया। गहरे विमर्श के बाद मनोचिकित्सक भी इसी निष्कर्ष पर पहुंचे कि दीपक को उसकी मर्जी के मुताबिक रहने की स्वीकृति देना ही ठीक होगा। वो एक लड़के के तौर पर अपनी जिंदगी बसर करने के लिए अब न तो शारीरिक रूप से तैयार है न मानसिक रूप से। मानसिक रूप से तो मैं समझ सकता हूं, लेकिन शारीरिक भी? मैंने जिज्ञासा प्रकट की। हाँ समीर, छोटू मामा ने बताया कि उसके शरीर में कुछ अजीब से बदलाव आ रहे थे, उसके स्पर्श में, उसकी चाल ढाल में, उसकी बोलचाल में, सभी में लड़की का स्वभाव आने लगा था। पता नहीं कितनी मानसिक यातना से गुजरे होंगे मामा मामी। हाँ समीर, पता नहीं कैसे गुजारे होंगे उन्होंने वो दिन, लेकिन दोनों बहुत हिम्मती हैं। उन्होंने संकल्प लिया कि वे अपने बेटे को यूं घुट घुट कर जीता हुआ नहीं देख सकते। हाँ सुनीता, हमने देखा तो है कितने ही ऐसे लोगों को जिन्हें सही समय पर चिकित्सा सहायता या मार्गदर्शन न मिले तो वो कैसा जीवन जीने को अभिशप्त हो जाते हैं। यदि दीपक के बारे में उसके माँ बाप ऐसा न सोचे तो वो भी ऐसे ही अभिशप्त जीवन जीने के लिए बाध्य होगा। ये तो भला हो कि समय रहते ही सारी बातें मालूम हो गईं। हाँ समीर, छोटू मामा के सामने दो ही विकल्प थे, या तो वो अपने दीपक को उसी के दावा नल में धकेल दें जहां वो एक संज्ञाहीन जीवन जीने को अभिशप्त हो जाए, दूसरा रास्ता था अपने बच्चे को सही समय पर सही चिकित्सीय उपचार से नया जीवन दे। देहरादून में ये सब संभव नहीं था। शहर छोटा है और सुविधाएं भी इतनी नहीं है, इसलिए छोटू मामा दीपक को लेकर मुंबई गए, जहां दीपक का इलाज चला। उसके 3-4 ऑपरेशन हुए और दीपक दीपक से दिव्या बना। इतना सब हो गया और छोटू मामा ने हमें कुछ भी बताया नहीं। मैं तो अपने आप को उनके बहुत निकट समझता था, मुझे अफसोस हो रहा था। लेकिन सुनीता ने समझाया, जरा अपने आप को उनकी जगह रखकर सोचो समीर, वो क्या बताते और कैसे? जिसके भोग उसी को भोगने पड़ते हैं। फिर ये तो ऐसी बात है कि जितनी गोपनीय ढंग से हो उतना ही अच्छा है, लेकिन फिर ये आयोजन किस लिए? छोटू मामा के सामने उससे बड़ी चुनौती थी अपने बेटे के बदले हुए रूप की सामाजिक प्रस्तुति। उन्हें मालूम था कि देहरादून में, जहां वर्षों से लोग उसे लड़के के रूप में जानते हैं, वहां दिव्या के रूप में उसका स्वीकारा जाना कठिन है। ये तभी संभव होगा जब वे स्वयं इस प्रकरण में अपने बच्चे के साथ खड़े होंगे। इसलिए उन्होंने दिव्या के 18वें जन्मदिन का जश्न धूमधाम से मनाने का निर्णय लिया, जिससे दीपक को उसके बदले स्वरूप में सामाजिक स्वीकृति मिल सके। सुनीता ने अपनी बात खत्म की और मैं कुछ देर किंग कर्तव्य विमूढ़ बैठा रहा। क्या प्रतिक्रिया दूं, कैसे दूं, कुछ नहीं समझ पा रहा था। हाँ, पर ये समझ में आ रहा था कि सुनीता ने इतना बड़ा वायदा मुझसे क्यों लिया था। मुझे तो हैरत हो रही थी छोटू मामा और चैताली मामी की हिम्मत पर। कैसे सहा होगा ये सब उन्होंने, कितना दिल कड़ा किया होगा ये कठोर निर्णय लेने के पहले। मुझे बहुत देर खामोश बैठा देख सुनीता बोली, क्या हुआ, कुछ बोलते क्यों नहीं, चलना है ना देहरादून? हाँ हाँ हाँ, चलना है, अवश्य चलना है, लेकिन सोच नहीं पा रहा हूं कैसे फेस करूंगा छोटू मामा को, चैताली मामी को और दीपक, सॉरी दिव्या को। मैं अभी भी सदमे में था और उससे उबर नहीं पा रहा था। देखो वो माँ बाप हैं उसके, उनकी हिम्मत देखो, ऐसा करने के लिए कितना बड़ा कलेजा लगता है, समझ सकते हो। जब उन्होंने इतनी हिम्मत कर ली तो हमें तो बस जाकर उनका हौसला बढ़ाना है ना। उनके इस साहसिक कदम के लिए उनको बधाई देनी है और उनके साथ खड़ा होना है। कर पाओगे ना इतना मेरे लिए? सुनीता के शब्द साहस भरे थे लेकिन स्वर आर्त था। मुझे मालूम था कि सुनीता के लिए छोटू मामा कितनी अहमियत रखते हैं। सुनीता ने अपने पिता के बाद यदि किसी को चाहा था तो वे छोटू मामा ही थे, और सुनीता ही क्यों, मेरे लिए भी वे उतने ही प्रिय थे। रिश्तेदारी में वे भले ही सुनीता के मामा थे लेकिन उन्होंने हमेशा मुझे अपने मित्र का सा प्यार दिया है। उनके साथ बिताए पल मेरे भी जीवन के श्रेष्ठतम दिन थे। सुनीता को ना कहने का तो सवाल ही नहीं था। हाँ सुनीता, मेरी हमेशा हाँ ही है, ना कहने का तो सवाल ही नहीं है। पुराने जमाने के राजा महाराजा बेटे के लिए पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया करते थे। हमारे छोटू मामा अपनी बेटी के सम्मान में पुत्री कामेष्टि यज्ञ कर रहे हैं। हमारा वहां जाना तो बनता ही है। मैंने सुनीता से कहा और लैपटॉप खोलकर रिजर्वेशन के लिए IRCTC की वेबसाइट पर लॉगिन करने लगा। आप सुन रहे थे डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी जी द्वारा लिखी कहानी पुत्री कामेष्टि। वाचन था निधि बासु का। आज की कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। आपके कमेंट्स या फीडबैक का हमें इंतजार रहेगा। तो सुनते रहिए किस्सा कहानी बाय निधि बासु केवल Spotify पर, और फॉलो बटन दबा के मेरा पॉडकास्ट फॉलो करना ना भूलें।